मैथ्यूसन स्टोरी लाइन ऑफ द बाइबल लेक्चर एक जेन एक तीन 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। डॉक्टर डेविड मैथ्यूसन ने 2011 के पतन में डेनवर सेमिनरी में लौटने से पहले 8 साल तक गॉर्डन कॉलेज में न्यू टेस्टामेंट विषय और ग्रीक पढ़ाया। शिक्षाविदों में आने से पहले वह 6.5 साल तक मोंटाना में देहाती मंत्रालय में शामिल रहे और कई वर्षों तक मिनेसोटा के बेमिडजी में ओक हिल्स क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाते रहे। देव ने स्कॉटलैंड में एबरडीन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध प्रबंध शेफील्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसे ए न्यू हेवन एंड ए न्यू अर्थ द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट इन रिवीलेशन 21.1-22.5 और हाल ही में वर्बल एस्पेक्ट इन द बुक ऑफ रिवीलेशन 2010 में ईजे ब्रिल द्वारा प्रकाशित किया गया था। देव हमें बाइबल की कहानी से परिचित कराएंगे, जहां वह उत्पत्ति से रहस्योद्घाटन तक निम्नलिखित 5 प्रमुख विषयों का पता लगाएंगे। वे ईश्वर, वाचा, मंदिर, राजत्व और भूमि या सृष्टि के लोग हैं। यहां व्याख्यान संख्या 1 के साथ डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं, जो बाइबल की उत्पत्ति 1 से 3 तक की कहानी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, व्याख्यानों की इस श्रृंखला में मैं जो करना चाहता हूं वह यह है कि मैंने बाइबल की कहानी का शीर्षक क्या रखा है, और इसका मतलब यह है कि हालांकि बाइबल में ऐतिहासिक और साहित्यिक रूप से किताबों की विविधता शामिल है, जहां तक किताबों की साहित्यिक शैली की बात है, हालांकि बाइबल में विभिन्न प्रकार की किताबें शामिल हैं, साथ ही अंतर्निहित विविधता भी है, मेरी राय में यह एक एकीकृत कहानी या एकीकृत आख्यान है जो इतिहास में अपने लोगों के साथ ईश्वर के उद्धारकारी व्यवहार को प्रमाणित करता है। वास्तव में यह कहानी, जैसा कि हम इसे पुराने और नए नियम के पन्नों में प्रकट और विकसित होते देखेंगे, इस कहानी में उन कहानियों की सभी विशेषताएं हैं जिनसे हम परिचित हैं। इसका एक विशिष्ट कथानक है। उदाहरण के लिए हम कहानी की सेटिंग को देखेंगे, जिसे करने में हम इस पहले व्याख्यान का अधिकांश समय व्यतीत करेंगे। हम सेटिंग की जांच करेंगे, प्रमुख पात्र कौन हैं और कहानी के प्रमुख विषय और आंदोलन क्या हैं, और फिर सेटिंग केवल संघर्ष के लिए मंच तैयार करती है। अधिकांश अच्छी कहानियों में एक संघर्ष या संकट होता है जो कहानी में ही उभर आता है, जिसे हल करना होता है, और बाइबल की कहानी भी अलग नहीं है। हम उस संकट को देखेंगे जो बाइबल की कहानी या आख्यान या कथानक में उपजी है, और हम देखेंगे कि वह कहानी कैसे हल होती है, संकट या संघर्ष कैसे सुलझना शुरू होता है, और मुख्य रूप से न्यू टेस्टामेंट के आलोक में अपना समाधान पाता है, मसीह में पूर्णता, बल्कि उसके लोगों में भी। और इसलिए शुरुआत में मैं जो करना चाहता हूं वह शायद इस बारे में कुछ बातें कहना है कि व्याख्यानों की यह श्रृंखला क्या नहीं है। व्याख्यानों की यह श्रृंखला संपूर्ण बाइबल का सर्वेक्षण नहीं है। तो पुराने और नए टेस्टामेंट के बड़े हिस्से हैं, पूरी किताबें जिन्हें मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि यह हर प्रमुख किताब की मुख्य सामग्री और संरचना और विषयों और पृष्ठभूमि सेटिंग का सर्वेक्षण नहीं है। मैं बस कहानी का पता लगा रहा हूं, और हम पुराने नियम में पाए जाने वाले अधिक प्रमुख ग्रंथों को देखने में समय बिताएंगे और वे कहानी में कैसे योगदान देते हैं, लेकिन यह पूरे पुराने या नए नियम का सर्वेक्षण नहीं है। नहीं, व्याख्यानों की इस श्रृंखला में मैं ऐसे कई प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं जिनमें आपकी रुचि हो सकती है, उदाहरण के लिए उत्पत्ति में, जिसे हम आज सेटिंग की जांच करते समय देखेंगे। उत्पत्ति के आरंभिक अध्याय में मैं उत्तर नहीं दूंगा, और न ही शायद मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सुसज्जित या योग्य हूं, जैसे कैन और हाबिल को उनकी पत्नियां कहां से मिली, या ब्रह्मांड 7 शाब्दिक दिनों या युगों में बनाया गया था। मैं उन सवालों का जवाब नहीं देने जा रहा हूं। फिर से मैं मुख्य रूप से धर्मशास्त्रीय विषयों या धर्मशास्त्रीय कथानक पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं, क्योंकि यह पुराने और नए नियम के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। तो हम इसी ओर जा रहे हैं। फिर से मैं पुराने और नए नियम के प्रतिनिधि ग्रंथों को देखने में समय बिताऊंगा और हम उत्पत्ति 1-3 पर थोड़ा समय बिताएंगे, जो एक तरह से मंच तैयार करता है और कहानी की सेटिंग है। तो आइए अब उस पर नजर डालें। प्रारंभिक बिंदु या सेटिंग उत्पत्ति अध्याय 1-3 है, जो अध्याय 1, जो एक अर्थ में शेष खंड की व्यापक सेटिंग या सारांश प्रदान करता है। शुरुआत में भगवान ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। निराकार और शून्य था, और अंधकार ने गहरे के मुख को ढक लिया था। सेटिंग के बारे में यह जो सुझाव देता है वह यह है कि उत्पत्ति 1-3 तक की शुरुआत ईश्वर के अस्तित्व से होती है, जो अस्तित्व में मौजूद सभी चीजों का संप्रभु निर्माता है। वह अपनी रचना पर संप्रभु शासक है, और यह भगवान की रचनात्मक गतिविधि के इस खाते में है कि कहानी के सभी तत्व पाए जाते हैं। बाइबल की कहानी के हिस्से के रूप में बाइबल के बाकी हिस्सों में अपना रास्ता बनाने वाले सभी प्रमुख विषय पाए जाते हैं, और मैं बस उन प्रमुख विषयों पर बात करना चाहता हूं। पहला, और मैं उन्हें आवश्यक रूप से क्रम में प्रस्तुत नहीं करने जा रहा हूं, और कभी कभी इनमें से कुछ विषयों को अलग करना या विभाजित करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वे कहानी के हिस्से के रूप में अभिन्न रूप से संबंधित होते हैं। इसलिए कभी कभी मैं एक विषय पर बात करूंगा और कुछ अन्य विषयों पर भी बात करूंगा। लेकिन पहला विषय परमेश्वर के लोगों का विषय है। उत्पत्ति अध्याय 1-2 में सृष्टिकर्ता के रूप में अपने ब्रह्मांड पर संप्रभु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर एक ऐसे लोगों की रचना करता है जिनके साथ वह एक रिश्ते में प्रवेश करेगा। इसलिए आदम और हव्वा का मतलब सिर्फ पहला इंसान होना ही नहीं है, बल्कि वे परमेश्वर के आरंभिक या पहले लोग हैं, जिनके साथ परमेश्वर एक वाचा के रिश्ते में प्रवेश करेगा। और वह शब्द वाचा एक और विषय उठाती है, लेकिन आदम और हव्वा को ईश्वर के पहले लोगों के रूप में देखा जाना चाहिए, जिनके साथ ईश्वर सृष्टि के संप्रभु शासक के रूप में अब एक वाचा संबंध बनाएंगे और स्थापित करेंगे। वास्तव में आदम और हव्वा के लिए आदेश या इस कथा के भीतर और सृष्टि के भीतर उनका प्राथमिक कार्य, जिस पर ईश्वर सर्वोच्च शासक है, उत्पत्ति अध्याय 1:26-27 जैसे पाठ में निर्धारित है, जहां उनकी रचना के चरमोत्कर्ष पर काम करो, परमेश्वर कहता है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य व मनुष्य जाति को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं पर प्रभुता रखें, और पृथ्वी के सब बनैले पशुओं पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर। इसलिए परमेश्वर ने मानव जाति को अपनी छवि में बनाया। परमेश्वर की छवि में उसने उन्हें बनाया, नर और मादा उसने उन्हें बनाया। छवि के पीछे का विचार, मैं आश्वस्त हूँ, हालांकि सांस्कृतिक या धार्मिक और कार्यात्मक रूप से या ऑन्टोलॉजिकल रूप से विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए हैं कि छवि में क्या शामिल हो सकता है, कम से कम मुझे लगता है कि छवि का विचार सुझाव देता है कि एडम और ईव परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना है। भगवान की छवि में बनाए गए लोगों के रूप में उन्हें सृष्टि में भगवान का प्रतिनिधित्व करना है, और मुख्य रूप से यह समस्त सृष्टि पर प्रभुत्व रखने वाले उनके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो याद रखें, ईश्वर सृष्टि का सर्वोच्च शासक है, और अब वह मनुष्यों को अपने प्रतिनिधि के रूप में अपनी छवि में बनाता है। उन्हें उसकी सृष्टि पर ईश्वर के शासन का प्रतिनिधित्व करना है। उन्हें उसके प्रतिनिधियों के रूप में परमेश्वर के राजत्व और उसकी महिमा को संपूर्ण सृष्टि में फैलाना है। मेरा मानना है कि मुख्य रूप से इसका यही मतलब है जब यह कहा जाता है कि आदम और हव्वा भगवान की छवि में बनाए गए हैं। वे पूरी सृष्टि में उसके शासन और उसकी महिमा को फैलाने के लिए उसके प्रतिनिधि हैं। यह अगले प्रमुख विषय का परिचय देता है और वह यह है कि यह, जैसा कि हमने अभी कहा, भगवान की छवि की धारणा से संबंधित है, अर्थात आदम और हव्वा को जैसा कि ईश्वर की छवि में बनाया गया है, मुख्य रूप से ईश्वर की रचना में उनके उपशासकों के रूप में कार्य करना है, तो फिर उन्हें समस्त सृष्टि पर परमेश्वर के शासन का प्रतिनिधित्व करना है। उन्हें संपूर्ण सृजित ब्रह्मांड में परमेश्वर के शासन और उसकी महिमा को स्थापित करना और फैलाना है। वे भगवान के उपप्रतिनिधि हैं और भगवान के उपशासकों के रूप में संभवतः हमें उन्हें दिए गए जनादेश को इसी तरह समझना चाहिए। मैंने अभी उत्पत्ति 1 के श्लोक 26 और 27 पढ़े हैं, लेकिन श्लोक 28 दूसरे शब्दों में मुझे लगता है कि यह क्या सुझाव दे रहा है, और ध्यान दें कि फलदायी और बहुगुणित होने का आदेश एक बार फिर सारी सृष्टि पर प्रभुत्व या शासन करने के विचार से जुड़ा है। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में मुझे लगता है कि भगवान जो कह रहे हैं वह यह है कि वे भगवान की छवि वाहक बनने के अपने आदेश को पूरा करें और सृष्टि पर भगवान के शासन का प्रतिनिधित्व करने के लिए छवि धारण करने वाली संतान पैदा करें जो पृथ्वी को भर देंगी और इस माध्यम से भगवान के शासन को स्थापित और फैलाएं और सारी सृष्टि में महिमा। तो फिर इसे एक साथ रखने पर आदम और हव्वा को परमेश्वर की छवि में परमेश्वर के शासन के प्रतिनिधियों के रूप में बनाया गया है। ईश्वर सृष्टि पर सर्वोच्च शासक है, लेकिन उसने पूरी सृष्टि में अपने शासन का प्रतिनिधित्व करने के लिए आदम और हव्वा को अपनी छवि में बनाया और उन्हें भी फलदायी और बहुगुणित होकर और पृथ्वी को भरकर छवि धारण करने वाली संतान पैदा करनी है, और यह अन्य छवि धारण करने वाली संतानों के माध्यम से है कि परमेश्वर का शासन और उसकी महिमा अंततः पूरी सृष्टि में फैल जाएगी। अब यह हमें दूसरे विषय पर लाता है और वह है वाचा का विषय। फिर यह लोगों के साथ चलता है, लेकिन यद्यपि उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में वाचा शब्द का उल्लेख नहीं है, वाचा के सभी तत्व वहां मौजूद हैं, अर्थात ईश्वर को एक अधिपति सारी सृष्टि पर एक शासक के रूप में चित्रित किया गया है, और अब वह ऐसे लोगों का निर्माण और चुनाव करेगा जिन्हें वह आशीर्वाद देगा और उनके साथ एक रिश्ते में प्रवेश करेगा, और इस वाचा में आशीर्वाद और शाप भी शामिल होगा। भगवान उन्हें आशीर्वाद देंगे, और अध्याय 1 के श्लोक 28 में ध्यान दें कि भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, फूलो फलो बढ़ो। इसलिए सृष्टि ईश्वर के लोगों के लिए आशीर्वाद का स्थान है, फिर भी हम बाद में देखेंगे कि ऐसे श्राप भी हैं जो पूरे हो जाएंगे यदि वे वाचा के अपने पक्ष में रहने से इनकार करते हैं। वाचा का मुख्य हृदय सूत्र है, मैं उनका ईश्वर बनूंगा और तुम मेरे लोग होगे, जिसे आप पूरे पुराने नियम में दोहराया हुआ पाते हैं। पुनः सूत्र स्वयं यहाँ नहीं है, वाचा शब्द यहाँ नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से सृष्टि पर अधिपति शासक के रूप में ईश्वर अब एक लोगों का निर्माण करके और उनके पक्ष का पालन करने पर उन्हें आशीर्वाद देकर अपने लोगों के साथ एक वाचा संबंध में प्रवेश करने का इरादा रखता है। वाचा की शर्त, और यह शर्त अध्याय 2 में उनके लिए परमेश्वर की आज्ञा में पाई जाती है कि उन्हें अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए। और फिर मुझे इस बिंदु पर यह समझाने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वह क्या हो सकता है, लेकिन बस इस मुद्दे को उठाना शर्त है कि यदि उन्हें फलदायी और बहुगुणित होने के अपने आदेश को पूरा करना है और सारी सृष्टि पर ईश्वर के शासन का प्रतिनिधित्व करना है, इस वाचा के रिश्ते के हिस्से में वे अच्छे और बुरे के ज्ञान के इस पेड़ को न छूकर भगवान का पालन करेंगे। इसके विपरीत उस आदेश की अवज्ञा करने से शाप मिलेगा, आशीर्वाद और शाप के विषय की तरह जो आपको बाद में पुराने नियम में मोज़ेक वाचा के साथ मिलता है। इसलिए ईश्वर एक वाचा संबंध स्थापित करता है, वह आदम और हव्वा का ईश्वर होगा उसके नव निर्मित लोग होंगे और वे उसके लोग होंगे और वे अपने आदेश को पूरा करेंगे और उन्हें वाचा के अंत को बनाए रखना होगा और यदि वे ऐसा करते हैं भगवान उन्हें आशीर्वाद देंगे। यदि वे अवज्ञा करेंगे तो परमेश्वर उन्हें शाप देगा और उन्हें उस वाटिका से अर्थात उस देश से जो उसने उन्हें दिया है निकाल देगा। यह हमें अगले विषय पर लाता है और वह है भूमि का विषय। उत्पत्ति 1 और 2 और सृष्टि के 7 दिनों का यह विस्तृत विवरण, फिर से मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम उन्हें कैसे समझते हैं, चाहे वह शाब्दिक 24 घंटे का दिन हो या लंबी अवधि, मेरी बात सही नहीं है। अब मुद्दा यह है कि धार्मिक दृष्टि से वह कहानी की सेटिंग और शुरुआत में क्या योगदान देता है। मुझे लगता है कि अध्याय 1 और 2 में जो चल रहा है वह सिर्फ पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं है, हालांकि यह ऐसा करता है, यह पृथ्वी और सृष्टि की शुरुआत के बारे में बात करता है, लेकिन यह कहीं भी वैज्ञानिक व्याख्या के करीब नहीं है। पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी की उत्पत्ति और यह विवरण निश्चित रूप से वैज्ञानिक व्याख्याओं को बिल्कुल भी खारिज नहीं करता है, लेकिन जो चल रहा है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि यह ईश्वर द्वारा एक ऐसी भूमि या वातावरण बनाने के बारे में है जो उसके लोगों के लिए उपयुक्त हो। परमेश्वर एक ऐसा वातावरण बना रहा है जो उसके लोगों के रहने योग्य हो और एक ऐसा वातावरण जिसमें वह निवास कर सके और अपने लोगों के साथ रह सके। इसलिए अध्याय 1 और 2 में भूमि आशीर्वाद का स्थान है, फलने फूलने का स्थान है, जिसका ईश्वर की रचना, उसकी मानवता, उसके नए लोग आदम और हव्वा फिर से आनंद ले सकते हैं यदि वे वाचा के अंत का पालन करेंगे। यदि नहीं तो उन्हें इस भूमि से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो भूमि अध्याय 1 और 2 में जो चल रहा है वह भूमि है जिसे भगवान अपने लोगों आदम और हव्वा को एक अनुग्रहपूर्ण उपहार के रूप में प्रदान कर रहा है। यह आशीर्वाद का स्थान है जहां भगवान अपने लोगों के साथ निवास करेंगे और निवास करेंगे। अब भूमि और सृष्टि के विषय से संबंधित और वास्तव में मैं चाहता हूं कि आप अध्याय 1 और श्लोक 1 पर ध्यान दें। शुरुआत में भगवान ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। हम बाद में एक व्याख्यान में देखेंगे जहां यह अवधारणा फिर से सामने आती है और महत्वपूर्ण है, लेकिन भूमि के निर्माण के इस विषय के संबंध में जो लोगों के लिए आशीर्वाद और एक अनुग्रहपूर्ण उपहार के रूप में एक भूमि का निर्माण कर रहा है, एक ऐसा वातावरण जो उसके लोगों के रहने के लिए और भगवान के उनके बीच में रहने के लिए उपयुक्त है। क्या यह अध्याय 1 और 2 में उल्लेख पर ध्यान देता है, विशेष रूप से अध्याय 2 में एक बगीचे के उल्लेख पर? तो अध्याय 2 में छंद 8 और 9 में हम इसके बारे में और अधिक बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यह शुरू होता है और प्रभु परमेश्वर ने पूर्व में अदन में एक वाटिका लगाई और वहां उस मनुष्य को रखा जिसे उसने बनाया था। यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में मनभावन और खाने में अच्छे होते हैं। जीवन का वृक्ष भी बगीचे के बीच में है और अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़ है जिसे बाद में आदम और हव्वा ने अनुबंध की शर्त के हिस्से के रूप में कहा था कि उन्हें छूने की अनुमति नहीं है। लेकिन मैं बगीचे के बारे में जो कहना चाहता हूं वह मुख्य रूप से यह है कि यहां क्या हो रहा है, और मैं इस अवलोकन का श्रेय ओल्ड टेस्टामेंट के प्रोफेसर जॉन वाल्टन और कुछ अन्य लोगों को भी देता हूं। लेकिन यहां जो कुछ भी हो रहा है मुझे लगता है वह बगीचा है, ईडन को चित्रित किया जा रहा है और कुछ मायनों में शेष सृष्टि, लेकिन विशेष रूप से ईडन के बगीचे को मुझे विश्वास है पवित्र स्थान के रूप में चित्रित किया जा रहा है। अदन का बगीचा वह स्थान है जहां भगवान अपने लोगों आदम और हव्वा के साथ निवास करेंगे और आदम और हव्वा की भूमिका इसकी रक्षा करना और इसे बनाए रखना है। अध्याय 2 और श्लोक 15 पर ध्यान दें। यह कहता है, प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को ले लिया और उसे अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसे जोतकर उसकी रक्षा करे। अब वह वाक्यांश इसे जोतने और इसे बनाए रखने के लिए, मुझे विश्वास है कि यह आदम और हव्वा को पहले माली या पहली सृष्टि के पहले भूस्वामी के रूप में चित्रित नहीं कर रहा है, बल्कि इसके बजाय उनकी एकमात्र भूमिका पवित्र स्थान की रक्षा करना है। उनकी भूमिका मंदिर में बाद में पुजारियों की भूमिका के समान है, ताकि एडम और ईव एक अर्थ में ईडन के बगीचे के पहले पुजारी के रूप में कार्य करें। अब बाद में यहूदी साहित्य, विशेष रूप से जो हम बाद में पुराने नियम में देखेंगे, मुझे लगता है कि पुराना नियम स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि मंदिर, पुराने नियम का मंदिर, मूल रूप से ईडन का एक लघु उद्यान माना जाता था, क्योंकि यही वह जगह है भगवान पहले वास करते थे। वह पहला पवित्र स्थान था जहां भगवान अपने लोगों के साथ रहते थे। लेकिन पुराने नियम में बहुत से यहूदी साहित्य, विशेष रूप से कुछ सर्वनाशी साहित्य, ईडन गार्डन को एक मंदिर के रूप में और एडम को मंदिर में कार्य करने वाले पहले पुजारी के रूप में चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए, थर्ड हनोक नामक एक पुस्तक ईडन को एक ऐसे स्थान के रूप में चित्रित करती है जहां भगवान की शकीना महिमा की चमक बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक चमकती थी, और अन्य संदर्भ भी हैं। तो स्पष्ट रूप से ईडन गार्डन को एक पवित्र स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए जहां भगवान अपने लोगों के साथ निवास करेंगे, जैसा कि उन्होंने मंदिर में किया था। और आदम और हव्वा इसकी रक्षा करने के लिए और इसे बनाए रखने के लिए हैं, पहले भूस्वामी के रूप में नहीं, बल्कि एक अर्थ में पहले पुजारी के रूप में, जिन्हें इस पवित्र स्थान की रक्षा करनी है और इस पवित्र स्थान की देखभाल करनी है जहां भगवान निवास करते हैं अपने लोगों के साथ। शुरुआत में हम इस पर बाद में एक अन्य व्याख्यान में लौटेंगे जब हम मंदिर के बारे में अधिक विशेष रूप से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में ही कई विशेषताओं पर ध्यान दें, अन्य विशेषताएं जो स्पष्ट रूप से इसे मंदिर से जोड़ती हैं, यहां तक कि अध्यायों पर भी वापस जा रही हैं। एक और दो प्रकाशमानियों और रोशनियों का उल्लेख मंदिर के भीतर दीवट से उत्पन्न रोशनी की याद दिलाता है। वही दीवट जो पुराने नियम के मंदिर में स्थित थी, संभवतः उस पेड़ की याद दिलाती है। दीवट का अर्थ उस पेड़ से मिलता जुलता था, शायद जीवन का पेड़ जो अदन की वाटिका में मौजूद था। दिलचस्प बात यह है कि एक और अवलोकन फिर से, जो कि मैं जॉन वाल्टन का आभारी हूँ, वह यह है कि भगवान सातवें दिन आराम करते हैं। यह केवल भगवान के मनोरंजन का संकेत नहीं है, या स्पष्ट रूप से इस तथ्य का संकेत नहीं है कि वह थक गए थे और उन्हें जरूरत थी सृजन की इस कठोर गतिविधि को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ तक कि भगवान के आराम करने की धारणा भी मंदिर की कल्पना के साथ प्रतिध्वनित होती प्रतीत होती है। बाद में पुराने नियम में कई स्थानों पर, इतिहास में यशाया अध्याय 66 में मंदिर का उल्लेख भगवान के विश्राम स्थल के रूप में, भगवान की उपस्थिति के विश्राम स्थल के रूप में किया गया है। भगवान की उपस्थिति मंदिर में ही शांत हो गई। इसलिए जब ईश्वर अपनी रचना के समापन पर विश्राम करता है, तो यह दर्शाता है कि यह अब पवित्र स्थान है। यह भगवान का मंदिर है जिसमें वह अब विश्राम करते हैं या अपने लोगों के बीच रहते हुए निवास करते हैं। और फिर हम इसे तब देखेंगे जब हम बाद में मंदिर के विषय पर लौटेंगे। अब भौगोलिक दृष्टि से, मुझे भौगोलिक दृष्टि से इस पर एक टिप्पणी करने दीजिए कि अध्याय 1, 2 और 3 में क्या हो रहा है, विशेष रूप से ईडन गार्डन के इस विवरण के साथ। ध्यान दें कि 8 कैसे शुरू होता है, और भगवान ने पूर्व में ईडन में एक बगीचा लगाया। और सवाल यह है कि भौगोलिक दृष्टि से हम इसकी कल्पना कैसे करें। क्या ईडन गार्डन अध्याय 1 और 2 के साथ विस्तृत है, ताकि ईडन गार्डन पूरी सृष्टि को कवर कर सके? क्या ईडन और शायद उसके भीतर का बगीचा सृष्टि के भीतर एक अलग स्थान है? उत्पत्ति 1-3 में जिस प्रकार का ब्रह्मांड विज्ञान या यहाँ तक कि भूगोल दर्शाया गया है वह थोड़ा कठिन है, लेकिन शायद, और मैं इस अवलोकन का श्रेय ग्रेगरी बील को देता हूँ, वह सुझाव देते हैं कि शायद ईडन का बगीचा सृष्टि के भीतर एक जगह है, वह जगह जहाँ भगवान की उपस्थिति रहती है, और आदम और हव्वा का मुख्य कार्य परमेश्वर की छवि के वाहक और उसकी बर्बाद महिमा के प्रतिनिधियों के रूप में और छवि धारण करने वाली संतानों को पैदा करके, जिन्हें संपूर्ण सृष्टि में परमेश्वर के शासन और महिमा का प्रसार करना है, तब आदम और हव्वा का मुख्य कार्य विस्तार करना है, ईडन अंततः संपूर्ण पृथ्वी और संपूर्ण विश्व को घेर लेगा, ताकि ईडन, ईडन का बगीचा, अंततः संपूर्ण सृष्टि के साथ व्यापक हो जाए। तो मंच तैयार है, सेटिंग अब जगह पर है, पुरुष और महिलाओं को भगवान के लोगों के रूप में बनाया गया है और भगवान के साथ एक अनुबंधित रिश्ते में प्रवेश करने के लिए बनाया गया है। ईश्वर ने उन्हें उस भूमि का अनुग्रहपूर्ण उपहार दिया है जो उसने उनके लिए बनाई है और उसके छवि वाहक और प्रतिनिधियों के रूप में उन्हें संपूर्ण सृष्टि पर संप्रभु अधिपति, संप्रभु शासक के शासन और राजत्व का प्रतिनिधित्व करना है। उन्हें संपूर्ण सृष्टि में उसके शासन और महिमा का प्रतिनिधित्व करना और फैलाना है, और उन्हें फलना फूलना है, और ऐसा करने से पृथ्वी भर जाएगी संभवतः अन्य छवि धारण करने वाली संतानों से, और उन्हें उस पवित्र स्थान की देखभाल और सुरक्षा करनी है जो भगवान ने उन्हें दिया है। और इस सब का चरमोत्कर्ष यह है कि ईश्वर अब निवास करता है और अपने लोगों के साथ उस सृष्टि में रहता है जो उसने उन्हें बहुत दयालुता से दी है। अब उत्पत्ति 3 उस संघर्ष या जटिलता को उठाता है जो एक अर्थ में शेष पुराने और नए नियम में मुख्य विभाजन प्रदान करता है। आप वास्तव में अध्याय 3 के बाद आप उत्पत्ति 1-3 और शेष पुराने और नए नियम के बीच एक मुख्य विभाजन रख सकते हैं। पुराने और नए नियम का शेष हिस्सा उस जटिलता का समाधान होगा जो उत्पत्ति अध्याय 3 में उभरती है। इसलिए अध्याय 3 में जटिलता यह है कि सांप आदम और हव्वा को पाप करने के लिए प्रलोभित करता है और वह ऐसा उन्हें पाप करने के लिए प्रेरित करके करता है। वाचा की शर्त, परमेश्वर के साथ वाचा का संबंध। आदम और हव्वा से कहा गया था कि उन्हें अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को नहीं छूना है और शैतान ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रलोभित किया। तो अब पाप ईश्वर की रचना में प्रवेश करता है और पाप अब ईश्वर के मूल इरादे को विफल कर देता है कि मानवता ईश्वर की छवि धारण करने वाली बने, उसके शासन को प्रतिबिंबित करे, उसके शासन और महिमा को पूरी सृष्टि में फैलाए, ईश्वर उनके बीच में रहे। अब पाप दृश्य में प्रवेश करता है और उस इरादे को विफल कर देता है, ताकि अब दिलचस्प बात यह है कि आदम और हव्वा को ईडन गार्डन से निर्वासित कर दिया गया है। और मैं निर्वासन शब्द का उपयोग जानबूझकर करता हूँ, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप देखेंगे कि ऐसा क्यों है। आप देखेंगे कि मैं उस शब्द का उपयोग क्यों करता हूँ। लेकिन आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से निर्वासित कर दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि अध्याय 3 में हमने यह भी पढ़ा है कि न केवल उन्हें बगीचे से निष्कासित कर दिया गया है, बल्कि श्लोक 24 में यह कहा गया है, मैं अध्याय 3 उत्पत्ति 3 के श्लोक 23 का समर्थन करूंगा और पढ़ूंगा। इसलिए भगवान उसे अदन की वाटिका से उस भूमि पर खेती करने के लिए भेजा जहां से उसे उठाया गया था। उसने उस आदमी को बाहर निकाल दिया और अदन की वाटिका के पूर्व में उसने जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा के लिए करूबों और एक तलवार को रख दिया जो जलती और मुड़ती थी। तो आपको आदम और हव्वा की उस भूमि से निष्कासित या निर्वासित की यह तस्वीर मिलती है जो आशीर्वाद का स्थान भगवान ने उन्हें दिया था, जहां उन्हें भगवान की छवि धारण करने वाले प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करना था, ताकि पूरी सृष्टि में भगवान की महिमा और शासन फैलाया जा सके। इसके बजाय अब वे पाप और अवज्ञा के कारण, क्योंकि उन्होंने वाचा के रिश्ते को तोड़ दिया है, उन्हें बगीचे से और उस पवित्र स्थान से निष्कासित कर दिया गया है जिसे उन्हें रखना था। और अब परमेश्वर ने इसकी रक्षा के लिए पूर्वी प्रवेश द्वार पर दो करूब, दो देवदूत प्राणी रखे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन दो चीजों पर ध्यान दें जिन पर हम बाद में लौटेंगे। तथ्य यह है कि गार्डन के प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाले दो देवदूत प्राणी हैं, और यह तथ्य कि सृजन कथा इसे ईडन गार्डन के पूर्व में स्थित स्थान के रूप में पहचानने का एक बिंदु बनाती है, इसके पूर्व में होने की दिशात्मक धारणा। तो यही जटिलता उत्पन्न होती है। लेकिन श्लोक 15, हालांकि फिर भी मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। श्लोक 15 को अक्सर सुसमाचार के प्रारंभिक चरण या समाचारों में सुसमाचार के रूप में देखा जाता है, लेकिन कम से कम श्लोक 15 और 16, विशेष रूप से श्लोक 15, उस जटिलता के समाधान के लिए ईश्वर के दयालु प्रावधान का संकेत देते प्रतीत होते हैं जो अब उत्पन्न हो गई है। और पद 15 कहता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तुम्हारे सिर पर वार करेगा और तुम उसकी एड़ी पर वार करोगे। अब फिर इससे अधिक कुछ नहीं कहा गया है, सिवाय इसके कि यह एक संघर्ष की शुरुआत है जिसका अंतः समाधान निकलेगा। हालांकि इस बिंदु पर कथा हमें वास्तव में यह नहीं बताती है कि वह कैसा दिखेगा, लेकिन बाइबल का बाकी हिस्सा, मेरी राय में उत्पत्ति का बाकी हिस्सा, नए नियम तक यह कहानी है कि कैसे भगवान मानवता और अपनी संपूर्ण रचना के लिए अपने मूल इरादे को बहाल करने जा रहे हैं। अर्थात परमेश्वर ने उस देश में उसके साथ एक वाचा के संबंध में पुरुषों और महिलाओं की रचना की, जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अनुग्रह पूर्वक प्रदान किया है, और परमेश्वर उनके बीच में निवास करता है। और मानवता ईश्वर के प्रतिरूप, ईश्वर के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है, जो संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर के शासन और उसकी महिमा को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। और शेष पुराने और नए टेस्टामेंट बताएंगे कि यह जटिलता जो अध्याय 3 में पेश की गई है, वह जटिलता कैसे हल हो जाती है, भगवान मानवता के लिए अपने मूल इरादे को कैसे बहाल करेंगे। तो यह हमें उस सेटिंग और उस जटिलता के अंत तक ले आता है जिसे पेश किया गया है। अब मैं फिर से जो करना चाहता हूं वह यह है कि मैं सामग्री के बड़े हिस्से को छोड़ दूंगा, खासकर पुराने नियम में, और फिर मैं केवल प्रमुख विषयों, प्रमुख ग्रंथों और उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में व्यक्त मानवता और सृजन के लिए अपने मूल इरादे को बहाल करने के लिए भगवान के उद्देश्यों की पूर्ति की कहानी में प्रमुख आंदोलनों पर बात करूंगा। और मैं छोड़ना चाहता हूं उत्पत्ति अध्याय 12 से आगे, जहां इज़राइल की कहानी पूरी सृष्टि के लिए भगवान के इरादे को स्थापित करने या पुनर्स्थापित करने का भगवान का प्राथमिक साधन बन जाती है। तो फिर उत्पत्ति 1 और 2 ईश्वर द्वारा समस्त सृष्टि के साथ व्यवहार के वृहद स्तर पर हैं। अब एक संकीर्ण प्रभाव के माध्यम से ईश्वर अब एक व्यक्ति बल्कि एक राष्ट्र पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, जिसके माध्यम से ईश्वर सृष्टि को उसके मूल कार्य में पुनर्स्थापित करने के अपने इरादे को स्थापित करेगा। फिर से भूमि में रहने वाले परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर की भूमि का उपहार जो उसने उन्हें दिया है, परमेश्वर उनके बीच में निवास करता है, और परमेश्वर के लोग संपूर्ण सृष्टि में परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के शासन को फैला रहे हैं। कहानी फिर उत्पत्ति अध्याय 12 में शुरू होती है, और उत्पत्ति 12 शुरू होती है, अब प्रभु ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने रिश्तेदारों और अपने पिता के घर से उस देश में जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, यहां तक कि तू आशीष ठहरेगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे शाप दे उसे मैं शाप दूंगा, और तुझ में पृथ्वी के सारे कुल या सारी जातियां आशीष पाएंगी। तो यह उत्पत्ति एक और दो और उन स्थितियों को पुनर्स्थापित करने के परमेश्वर के इरादे की शुरुआत है जो सृष्टि के लिए उसके मूल इरादे में सच थीं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ठीक है, ध्यान दें कि कैसे फिर से उत्पत्ति एक दो और तीन के सभी प्रमुख विषय परमेश्वर के इब्राहिम और इसराइल राष्ट्र के चयन और इसराइल की कहानी में संघर्ष और दुविधा को सुलझाने के साधन के रूप में फिर से सामने आते हैं। उत्पत्ति के अध्याय तीन में सबसे पहले ईश्वर द्वारा इसराइल को भूमि देने या ईश्वर द्वारा इब्राहिम को भूमि देने के स्पष्ट संदर्भ पर ध्यान दें। तो श्लोक एक में जब यह कहा गया है, अपने देश और अपने रिश्तेदारों और अपने पिता के घर को जाओ या अपने देश से उस देश को जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। दूसरे शब्दों में यह उत्पत्ति एक और दो के लोगों को भूमि देने के परमेश्वर के इरादे की बहाली का प्रारंभिक चरण है। उत्पत्ति एक और दो में याद रखें, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए उपयुक्त वातावरण के रूप में भूमि का निर्माण किया। यह वह अनुग्रहपूर्ण उपहार था जो उसने अपने लोगों को आशीर्वाद के स्थान के रूप में दिया था, वह स्थान जहां भगवान अपने लोगों के साथ निवास करेंगे। परंतु आदम और हव्वा को पाप के कारण निर्वासित कर दिया गया। अब परमेश्वर ने इब्राहिम और इसराइल के लोगों को परमेश्वर के आशीर्वाद के स्थान के रूप में और उस स्थान के रूप में भूमि पर वापस लाने के लिए चुना है जहां परमेश्वर एक बार फिर अपने लोगों के साथ निवास करेगा। यह भूमि है। उत्पत्ति अध्याय एक और दो की पूर्ति में भूमि अपने लोगों के लिए ईश्वर का अनुग्रहपूर्ण उपहार है। इसलिए इब्राहिम को भूमि और इसराइल के राष्ट्र में ले जाना जो उससे आएगा, उसकी रचना के लिए ईश्वर के मूल इरादे की स्थितियों की पुनर्स्थापना है और आदम और हव्वा में मानवता के लिए उत्पत्ति अध्याय एक और दो में उसके लो वाचा के विषय पर भी ध्यान दें। इस अध्याय में और उत्पत्ति के बाद के अध्यायों में ईश्वर को एक अधिपति के रूप में सृष्टि पर शासक के रूप में स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है जो अब इब्राहिम को चुनेगा और बुलाएगा और उसे आशीर्वाद देना चुनेगा। अध्याय 12 श्लोक 2 और 3 में पहले से ही आशीर्वाद और शाप की भाषा पर भी ध्यान दें। लेकिन अब्राहम की कहानी के बाद के खंडों में यह स्पष्ट है कि भगवान अब्राहम के साथ एक रिश्ते में प्रवेश करते हैं। इसलिए यहां हम वाचा के विषय को इस रूप में देखते हैं कि जिस तरह से भगवान अपने लोगों के साथ एक रिश्ते में प्रवेश करेंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे जो पहले से ही उत्पत्ति एक और दो में पाया गया है, अब यह प्रमुख तरीका बन गया है कि भगवान अपने लोगों के साथ एक रिश्ते में प्रवेश करेंगे, उन्हें भूमि पर पुनर्स्थापित करेंगे और उन्हें आशीर्वाद दें जैसा कि उत्पत्ति अध्याय एक और दो में सृजन के लिए उनका मूल इरादा था। उदाहरण के लिए भगवान इब्राहिम के साथ बल्कि उसकी बाकी संतानों के साथ भी एक वाचा संबंध में प्रवेश करता है। अध्याय 15 और 18 पर ध्यान दें जो स्पष्ट रूप से अध्याय 15 है। अध्याय 15 के सभी स्पष्ट रूप से एक अनुबंध समारोह से संबंधित हैं जहां भगवान इब्राहिम के साथ एक अनुबंध संबंध में प्रवेश करते हैं। और ध्यान दें कि श्लोक 18 कैसे समाप्त होता है। यह कहता है, उस दिन यहोवा ने अब्राम से यह कहकर वाचा बांधी कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। भूमि के संबंध पर ध्यान दें, उस वाचा के साथ भूमि का उपहार जो परमेश्वर इब्राहिम और उसके वंशजों के साथ बनाता है। इसके अलावा इरादा इब्राहिम को आशीर्वाद देने के इरादे पर ध्यान दें स्पष्ट रूप से अध्याय 12 में, लेकिन पूरे इब्राहिम कथा में दोहराया गया है। इब्राहिम को आशीर्वाद देने का इरादा स्पष्ट रूप से उस श्राप का उल्टा है जो उत्पत्ति अध्याय 3 में होता है। आदम और हव्वा के पाप के परिणाम स्वरूप अध्याय 3 का अंत भगवान के श्राप के साथ होता है। भगवान द्वारा सृष्टि को श्राप देने के साथ ही सर्प का अंत हो जाता है। और अब इसके उलट इब्राहीम को उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में अपने लोगों के लिए भगवान के इरादे की पूर्ति में आशीर्वाद और भूमि आशीर्वाद की जगह है, फिर से वापसी का वादा किया गया है। भगवान के लोगों के विषय पर भी ध्यान दें कि ईश्वर द्वारा इब्राहीम को चुनने और उसके साथ एक वाचा संबंध में प्रवेश करने का इरादा अंततः यह है कि इब्राहीम से एक लोग एक राष्ट्र उत्पन्न होगा जिसके माध्यम से ईश्वर या जिसके साथ ईश्वर एक वाचा संबंध में प्रवेश करेगा। हमने पहले ही उल्लेख किया है कि यह वाचा जो परमेश्वर ने इब्राहीम के साथ स्थापित की थी वह अंततः उसके वंशजों के लिए भी है। लेकिन इब्राहीम से यह लोग उत्पन्न होंगे जो परमेश्वर के लोग होंगे और परमेश्वर उनका परमेश्वर होगा, ताकि इज़राइल अब उत्पत्ति 1 और 2 से सृष्टि के अपने मूल इरादे को बहाल करने के लिए परमेश्वर का साधन बनने जा रहा है। तो आदम और हव्वा क्या करने में असफल रहे पाप के कारण और उन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया। अब परमेश्वर इसराइल को आशीष के स्थान के रूप में भूमि पर वापस ले जाना चाहता है, ताकि उन्हें वाचा के रिश्ते में प्रवेश करने के लिए भूमि में आराम दिया जा सके, ताकि अंततः भगवान की महिमा और उसका शासन हो सारी पृथ्वी पर स्थापित हो जाओ। तो अब इसराइल का इरादा उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 से सृष्टि के लिए परमेश्वर के मूल उद्देश्य को पुनर्स्थापित करना है। ध्यान दें, इब्राहीम के वंश और वंशजों पर जोर, जो बार बार आपको उत्पत्ति में यह चित्र मिलता है कि इब्राहीम का वंश अंततः होना है आकाश के तारों और समुद्र की रेत से भी अधिक। ईश्वर विभिन्न रूपकों का उपयोग करता है, लेकिन कई बार वह इब्राहीम से कहता है कि यह संतान वह अंत में। याद रखें, अध्याय 12 में भी उसने उससे कहा था कि उससे एक महान राष्ट्र उत्पन्न होगा। अध्याय 15 में उन्होंने कहा कि इब्राहीम के साथ यह वाचा इसलिए थी ताकि उसके वंशजों के पास भूमि हो। बार बार परमेश्वर इब्राहीम से वादा करता है कि उसके वंशज और वंश आकाश के तारों या समुद्र की रेत से भी अधिक असंख्य होंगे। अध्याय 22 और श्लोक 17 से 18 तक ध्यान दें। श्लोक 17 से शुरू करते हुए उत्पत्ति 22 परमेश्वर इब्राहीम से बात करता है, मैं तुम्हें सचमुच आशीर्वाद दूंगा और मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों और समुद्र के किनारे की रेत के समान असंख्य बनाऊंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के फाटकों का अधिकारी होगा, और तेरे वंश के द्वारा प्रियवी की जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें कि इब्राहीम से आने वाली असंख्य संतानों का यह उल्लेख संभवतः उत्पत्ति अध्याय 1 में आदम और हव्वा को दिए गए आदेश का प्रतिबिंब है। यह याद रखें, जहां आपको याद है कि भगवान ने आदम से कहा था, और हे हव्वा, तू फूले फले और सारी पृथ्वी में भर जाए और उसे अपने वश में कर ले। अब इब्राहीम को बताया गया है कि उसकी संतानें आकाश के तारों और समुद्र के किनारे की रेत के समान असंख्य होंगी। मुझे लगता है कि यह आदम और हव्वा के लिए छविधारी संतान पैदा करने और फलने फूलने और अंततः पूरी पृथ्वी को भरने के लिए भगवान के मूल इरादे की पूर्ति है। तो वह आदेश अब इब्राहीम की ईश्वर की पसंद के साथ पूरा होना शुरू हो गया है, जो कई संतानें पैदा करेगा, जो फलदायी और बहुगुणित होगा, जो भूमि का मालिक होगा, उस पर कब्जा करेगा, भूमि पर बहाल किया जाएगा। ईश्वर के प्रावधान का अनुग्रहपूर्ण उपहार स्थान इस आशीर्वाद के लिए कि वह चाहता था कि आदम और हव्वा उनके बीच में ईश्वर के साथ रहें, और आदम और ईव ईश्वर के शासन का प्रतिनिधित्व करें और पूरी सृष्टि में उसकी महिमा फैलाएं। इसलिए इब्राहीम को सृष्टि और मानवता के लिए अपने मूल इरादे को बहाल करने के लिए ईश्वर के पहले कदम या पहले चरण के रूप में देखा जाता है। याद रखें, ईश्वर केवल अपने लोगों को पुनर्स्थापित नहीं कर रहा है और अपने लोगों को बचा नहीं रहा है, हालांकि यह शायद सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन अंततः ईश्वर को पूरी सृष्टि को पुनर्स्थापित करना होगा। लेकिन इब्राहिम उत्पत्ति एक और दो की स्थितियों को बहाल करने के लिए ईश्वर का पहला कदम है, जो पाप से बर्बाद हो गए थे और उत्पत्ति अध्याय तीन में पतन से बर्बाद हो गए थे। और फिर वह यह है कि ईश्वर लोगों का निर्माण और चयन करेगा, वह उनका ईश्वर होगा और वे उनके साथ वाचा के संबंध में उसके लोग होंगे। वह कृपापूर्वक उन्हें आशीर्वाद के स्थान के रूप में, अपनी उपस्थिति के स्थान के रूप में भूमि देगा और वे उसके शासन और उसकी महिमा को उसके छवि वाहक के रूप में फैलाएंगे। वे करेंगे उसके शासन और उसकी महिमा को उसके प्रतिनिधियों के रूप में पूरी सृष्टि में फैलाओ और पृथ्वी को परमेश्वर की महिमा और उसके संप्रभु शासन से भर दो। तो फिर यह कहानी का सिर्फ एक प्रमुख चरण है और कहानी कैसे सुलझना शुरू होती है, कहानी कैसे विकसित होनी शुरू होती है। और जैसा कि मैंने कहा, मैं सामग्री के बड़े हिस्से को छोड़ रहा हूं। यदि आप पीछे जाएं और बाढ़ की कथा को देखें, तो उत्पत्ति 6 से 9 में बाढ़ की कथा उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 के साथ सभी प्रकार की प्रतिध्वनि है। भगवान सृष्टि को पुनर्स्थापित करने, मानवता को पुनर्स्थापित करने के अपने इरादे की पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि अब उत्पत्ति अध्याय 12 अधिक है, यह विशिष्ट है कि ईश्वर ऐसा कैसे करना शुरू करता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं जरूरी तौर पर यह सुझाव नहीं देना चाहता कि पुराने नए नियम के हर एक विवरण को इस कहानी में जबरदस्ती शामिल किया जा सकता है या फिट किया जा सकता है। लेकिन फिर से मेरा मुख्य इरादा अपने लोगों के साथ भगवान के उद्धारपूर्ण व्यवहार की बाइबल की कहानी के प्रमुख धागों का पता लगाना है। भगवान के अपने मूल इरादे को बहाल करने का इरादा है, जो कि उनके लोगों के साथ ब्रह्मांड के संप्रभु निर्माता के रूप में उनके प्रारंभिक रचनात्मक कार्य में परिलक्षित होता है। चरमोत्कर्ष के रूप में उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 से उसके मूल इरादे को बहाल करने के लिए भगवान अब इतिहास में कैसे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगला पड़ाव बिंदु मूसा के माध्यम से अपने लोगों के साथ भगवान का व्यवहार और वह वाचा है जो भगवान ने मूसा के साथ बनाई थी। कहानी निर्गमन में शुरू होती है। फिर हमने बहुत सारी सामग्री छोड़ दी, लेकिन कहानी का अगला चरण निर्गमन की पुस्तक से शुरू होता है, जहां भगवान अपने लोगों को मिस्र की भूमि से बचाने और उन्हें फिर से उस देश में ले जाने के लिए मूसा को बुलाते हैं, जिसका वादा भगवान ने इब्राहिम से किया था। और हमने कहा कि यह मानवता के लिए उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 से ईश्वर के अनुग्रहपूर्ण उपहार के रूप में भूमि में रहने के अपने इरादे को बहाल करने के ईश्वर के इरादे का हिस्सा था। इसलिए अब्राहम की कहानी उस वाचा के साथ जारी है जिसे ईश्वर ने मूसा के माध्यम से लोगों के साथ बनाया था। इसराइल उनका उन्हें मिस्र से बचाना और उन्हें उनकी भूमि पर पुनर्स्थापित करने का उनका इरादा। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि यह पुराने नियम के बाकी हिस्सों और यहां तक कि नए नियम में भी कैसे काम करना शुरू करता है। इसराइल, इसराइल का राष्ट्र, हम इसे उत्पत्ति अध्याय 12 में पहले ही देख चुके हैं, लेकिन उस वाचा के माध्यम से जिसे भगवान ने अंतः इब्राहिम के साथ स्थापित किया है, इसराइल का राष्ट्र भगवान का साधन बनने जा रहा है, जिसके द्वारा वह सारी सृष्टि के लिए अपने इरादे को बहाल करेगा और उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 से उसके लोगों के लिए। इसलिए मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि उम्मीद है कि आप में से कई लोग इसे सुन रहे हैं। उन्हें इसकी याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यह सिर्फ इतना ही नहीं है, कहानी में एक नया मोड़ या परमेश्वर का अपने लोगों के साथ व्यवहार का एक नया चरण। परमेश्वर मूसा के माध्यम से इसराइल राष्ट्र के साथ जो करने जा रहा है, वह उत्पत्ति अध्याय 1 और 3 में सृष्टि कथा से अभिन्न और अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। फिर से इसराइल परमेश्वर के लोगों के रूप में इसराइल के चुनाव को साधन के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसके द्वारा परमेश्वर उत्पत्ति 1 और 2 से सृष्टि के अपने इरादे को पुनर्स्थापित करेगा। याद रखें, आदम और हव्वा विफल रहे। उन्होंने पाप किया और इसलिए उन्हें बगीचे से, भूमि से, आशीर्वाद के स्थान से, उस स्थान से जहां भगवान अपने लोगों के साथ रहते थे, पवित्र स्थान से निर्वासित कर दिया गया। और अब इसराइल को एक राष्ट्र के रूप में बुलाया जाता है। फिर से भगवान उन्हें मिस्र से छुड़ाने और उन्हें उस भूमि पर लाने का इरादा रखते हैं, जहां अब वे उत्पत्ति एक और दो से सृष्टि के लिए भगवान के मूल इरादे को पूरा करने के लिए भगवान का साधन होंगे। और इसलिए मोजेक वाचा और कानून देना वास्तव में वह साधन है जिसके द्वारा ईश्वर इब्राहिम से किया गया वादा निभाएगा और पूरा करेगा। फिर से इब्राहिम के माध्यम से उसने एक महान राष्ट्र का वादा किया है। वह उन्हें जमीन पर लाने जा रहा है। अब मोजेक वाचा वह तरीका है जिससे यह घटित होगा। कानून देने में परमेश्वर ने मूसा के साथ जो वाचा बांधी थी वह एक प्रकार का कानूनी साधन और तरीका है कि इब्राहिम के साथ बांधी गई वाचा अब लागू की जाएगी और अब कार्यान्वित की जाएगी। इसलिए मैं आगे जो करना चाहता हूँ वह इसराइल की कहानी पर थोड़ा और विस्तार से देखना है और यह कैसे न केवल इब्राहिम के साथ की गई कहानी और वाचा को पूरा करता है और जारी रखता है बल्कि सृष्टि तक वापस जाता है। कहानी कैसी है? इसराइल अंतिम है, चरम नहीं है, बल्कि उत्पत्ति अध्याय एक और दो में आदम और हव्वा और पूरी सृष्टि के लिए अपने मूल इरादे को बनाए रखने और पूरा करने का साधन है। वह डेव मैथ्यूसन थे जो बाइबल की स्टोरीलाइन का व्याख्यान नंबर एक था।